मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 11 जनवरी 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के लिए जो मैंने विषय चुना है, इसे मैंने लिया है अपने पिछले साल के 15 दिन के क्लास के दौरान की एक घटना से। हालांकि घटना बड़ी छोटी सी ही है, ऊपर से आपको छोटी ही दिखाई देगी और इसमें कोई बहुत ज्यादा रोचकता और रोमांच भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इस घटना की गहराई में जाकर विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि जीवन के लिए बड़े खूबसूरत और बहुत ही जरूरी, महत्वपूर्ण, गहरे तीन सूत्र आपको दिखाई देंगे। सच पूछिए मित्रों, तो मैंने इस विषय को इसलिए भी चुना है कि हम सब ये जान सकें कि हम सबकी जिंदगियों में जो बड़ी आम तौर पर रोजमर्रा के जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, वो दिखती बड़ी छोटी सी हैं, सतही हैं, लेकिन सच में उनका हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव होता है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि यदि प्रभाव नहीं होता है तो भी उनसे हम अपनी जिंदगी के लिए कितने बड़े मैसेजेस, संदेश, शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। हम अगर कहीं गलत जा रहे हों तो हम अपने रास्ते को सही दिशा में ले जा सकते हैं, हम खुद को करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए ऐसी एक छोटी सी घटना का यहां विश्लेषण करते हैं। मित्रों, ये घटना पिछले बैच की है, जो हमारा फिफ्थ बैच था। ये सितंबर में शुरू हुआ था और अक्टूबर में ये बैच 15 दिनों की क्लास के बाद खत्म हो गया था। लगभग आधे दिन बीत चुके थे, 8-9 दिन का दौर पूरा हो चुका होगा। जनरली होता यह है कि मैं इस 15 दिन की क्लासेस के दौरान मेरी कोशिश होती है कि कुछ जो अपने फील्ड की जो बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी होती हैं उनसे स्टूडेंट्स की मुलाकात कराऊं। तो उसी अपनी प्रोसेस के दौरान 8-10 क्लासेस जनरली मैं ऐसे रखने की कोशिश करता हूं, बाकी तो सारी की सारी क्लासेस मैं ही लेता हूं। मित्रों, मैं एक बात यहां बता दूं कि अगर मैं क्लास की घटना की चर्चा कर रहा हूं तो इसे केवल सिविल सर्विस की प्रिपरेशन तक सीमित न रखें, है ना। इसे केवल ये न समझें कि ये केवल उन लड़कों के लिए है जो सिविल सर्विस या कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। मित्रों, हमें यही तो अपने नजरिए को बदलना है कि छोटी सी चीज में भी कैसे बहुत बड़ी बड़ी चीजें छिपी हुई होती हैं, पेंडोरा बॉक्स की तरह। हमें यहां इस बात को समझना होगा। तो बात मैं भले ही अपने 15 दिन की क्लास की एक घटना की कर रहा हूं, लेकिन इसका सिविल सर्विस की तैयारी से कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध थोड़ा बहुत है तो वो आपके अपने लिए होगा, मतलब जो जिस बात पर भी इसे लागू करना चाहेगा लागू कर सकता है, यानी कि ये सबके लिए है, सिविल सर्विस के लिए भी है तो दूसरों के लिए भी है। तो मित्रों, एक सिविल सर्वेंट हैं, वो स्टेट सिविल सर्विस के ऑफिसर में हैं और उन्होंने अपने बैच में टॉप किया है और बहुत ही वर्सटाइल ऑफिसर है, बहुत ही दमदार। और मतलब छोटी सी लगभग 15-16 साल की नौकरी में जो व्यक्ति लगभग 35-40 देशों में जा चुका हो और बड़े जिम्मेदारी वाले पदों पर रहा हो और सच में एक उसका एक सम्मान भी हो, तो उनको मैंने बुलाया था अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। और वो उस दिन उन्होंने बात की क्राइसिस मैनेजमेंट पर। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट जानते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट उनके सिलेबस में है कि अचानक कोई संकट आ जाए तो आप कैसे निपटेंगे, और बट नेचुरली कि सिविल सर्वेंट को इसके लिए आर्मी मैन की तरह तैयार रहना चाहिए कि वो कैसे निपटेगा, यही तो उसे करना होता है। और मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप सब अपने अनुभव की बात बताएं, जो भी बाहर से हमारे गेस्ट आते हैं, कि आप अपने अनुभव की बात बताइए, किताबों की बातें नहीं। किताबों की बातें तो स्टूडेंट किताबों से पढ़ लेंगे, तो बड़ी मजेदार और बड़े इंटरेस्टिंग क्लासेस होती है वो। तो उन्होंने अपने दौर के एक घटना का जिक्र किया कि जब वो SDM थे तो किस तरीके से एक हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक ट्रक वाले ने एक बच्चे को कुचल दिया, बच्चे की डेथ हो गई, और इसके बाद क्या क्या संकट पैदा हुए और कैसे उन्होंने उस संकट से निजात पाया, कैसे मैनेज किया। तो इसको लेकर के बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी उन्होंने बताई और उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट के ढेर सारे सूत्र स्टूडेंट्स को मिले और बड़े व्यावहारिक सूत्र थे और सिविल सर्विस को यही चाहिए। तो दोस्तों, नेक्स्ट डे जब क्लास शुरू होनी थी तब मेरे पास 2-3 स्टूडेंट आए और उन्होंने मुझसे शिकायत की। शिकायत उन्होंने ये की कि सर आप ऐसे लोगों को मत बुलाया कीजिए लेक्चर देने के लिए। मैंने कहा कि क्या बात होगी, बात मुझे लगा कि सुननी चाहिए। तो बोले कि सर इन्होंने जो उस दिन कल जो क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में जो बताया उससे तो हम सब डर गए हैं और हमको तो ये लग रहा है कि हमें सिविल सर्विस की तैयारी करनी ही नहीं चाहिए, तो हम तो सबके सब डिमोरलाइज हो गए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कितने लोग डिमोरलाइज हो गए? उन्होंने कहा कि सर वहां हम लोग जितने भी स्टूडेंट रुके हुए हैं वो सबके सब डिमोरलाइज हो गए। मैंने कहा कितने रुके हुए? तो उस जगह पर शायद 50-60 स्टूडेंट रुके हुए थे। मैंने कहा सबके सब डिमोरलाइज? बोले हाँ सर सबके सब डिमोरलाइज हो गए। मैं कहा कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उन्हें एक बात जरूर कही कि देखो अगर तुम इस बात से डिमोरलाइज होते हो तो एक काम करो कि तुम्हें सिविल सर्विस की तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो उसके चैलेंजेस हैं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। बात खत्म हो गई। और फिर जब मैंने वहां रहने वाले जो और जो दूसरे स्टूडेंट थे, जब मैंने उनसे भी अलग से बात की बुला बुला करके कि वे कैसे डिमोरलाइज हो गए, क्योंकि अगर वो देखिए डिमोरलाइज हुए हैं तो ये तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं चीजों को क्लियर करूं, क्योंकि क्लासेस डिमोरलाइज करने के लिए तो नहीं है, या अगर वो कहीं कुछ गलत समझ रहे हैं तो मैं उन्हें सही करूं। मैं उनकी समस्या को गलत नहीं मान रहा हूं, वो जिस तरह से चीजों को ले रहे हैं वो जरूर गलत है और मैं उसे ही ठीक करना चाह रहा था, और ठीक करना मेरा धर्म भी है, दायित्व भी है, इसीलिए तो मैं वहां था। तो मेरी कोई शिकायत नहीं कि उन्होंने ये इसको इस तरीके से लिया, उन्होंने जैसा लिया वो लिया, खत्म हो गई बात। उन पर उसका यही प्रभाव पड़ा तो कोई क्या कर सकता है, तो वो अपनी जगह गलत नहीं थे, लेकिन उनकी गलती को अगर मैं नहीं सुधारता तो मैं जरूर गलत हो जाता। तो दोस्तों दूसरों को मैंने बुलाया, उन्होंने कहा कि नहीं सर ऐसी तो कोई बात नहीं है। खैर बात आई गई, खत्म हो गई और क्लासेस चलने लगी, और बाद में उन लड़कों ने आके माफी मांगी, अपनी गलती स्वीकार की, माफी तो नहीं कहना चाहिए, गलती स्वीकार की। मित्रों यहां इसी केवल एक छोटी सी घटना है जो मैंने कहा था कि बहुत ही मामूली घटना है, लेकिन इस घटना को लेकर के मैं जिंदगी के बारे में आपसे तीन केवल सूत्रों पर बात करना चाहूंगा जो मुझे लगते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। दोस्तों पहली बात तो यह कि यदि सच में यथार्थ से हम आंख मिलाने का मादा नहीं रखते हैं तो हमें वहां जाना क्यों चाहिए, उस यथार्थ को अपने जीवन का यथार्थ क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि वो अनिवार्य नहीं है। बात मेरी शायद थोड़ी सी कठिन हो गई। कठिन ये हो गई कि वो जो स्टूडेंट मेरे पास आए थे जो कहने के लिए, वो मैंने उनसे पूछा था कि तुम सब क्या करते हैं, तो वो टीचर थे, पढ़ा रहे थे, राजस्थान के स्टूडेंट थे, पढ़ा रहे थे। अब जब वो सिविल सर्विस की क्राइसिस के बारे में जब उन्होंने सुना कि बाप रे ऐसे आदमी घेर लेते हैं, ऐसे हड़ताल होने लगते हैं, ऐसे विरोध होता है, फलाना है, तो वो घबरा गए। चलिए उनका घबराना जायज था, वो घबरा गए। तो यहां जो मैं बात कह रहा चाह रहा हूं कि अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इस तरह के क्राइसिस आने पर उसका मुकाबला कर सके, तो आप ऐसी नौकरी में ऐसे काम में जाना ही क्यों चाहते हैं? कोई जरूरी तो नहीं है आपको जबरदस्ती कोई आर्मी रूल तो लागू नहीं कर दिया गया है कि हिंदुस्तान के सारे लोगों को सिविल सर्वेंट बनना ही पड़ेगा और उनको क्राइसिस मैनेज करना पड़ेगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। यानी कि हमें अपना बिल्कुल सही सही मूल्यांकन करना चाहिए, ये नहीं कि दूसरे के ग्लैमर से चलेगा। मित्रों अगर आप सिविल सर्विस में आ रहे हैं तो कोई दामाद बनने नहीं आ रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुलझाने आ रहे हैं, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने आ रहे हैं, एक चैलेंज ग्रहण करने आ रहे हैं, और इसीलिए तो लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि हमसे तो हमारी अपनी समस्या नहीं सुलझती और ये कि एक नौजवान है जो हम सबकी समस्या सुलझाएगा, आपको इसकी रेस्पेक्ट मिलती है और आप अपने इस काम को कर सकें, इसीलिए सरकार आपको अधिकार देती है, आपको सुविधाएं देती है, आपको वो इक्विपमेंट प्रदान करती है जो आपके लिए जरूरी हो। आपको थोड़ी बंदूक पकड़ा देगी, लेकिन आर्मी वाले के हाथ में तो बंदूक पकड़ाए बिना बात ही नहीं बनेगी। तो आपको सब सरकार सब कुछ देती है और आपकी उसको रिस्पेक्ट मिलती है। तो अगर मुझे इन चीजों से डर लगता है और मैं आराम की जिंदगी चाहता हूं, तो मुझे बहुत अच्छे से फैसला कर लेना चाहिए कि मैं उस काम को चुनूं जिसमें जिंदगी आराम से बीते। आराम की मेरी अपनी डेफिनेशन अलग हो सकती है, आपकी डेफिनेशन अलग हो सकती है, हर की डेफिनेशन अलग अलग होगी। पहली बात है दोस्तों, सभी को अपना सही सही मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरी बात, उन दो स्टूडेंट्स ने आकर के मुझसे कहा कि सब डिमोरलाइज हो गए हैं। जब मैंने बुला करके पूछा तो लोग तो बड़े खुश थे कि यार सब क्या लेक्चर हुआ सर, मजा आ गया, और कैसे सच में प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, और हमारा तो ये चैप्टर ही पूरा हो गया, वो तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा ये क्या हो गया? ये तो कह रहे थे कि ये तो, उसने बल्कि शब्द भी यूज किया था कि ये कुछ जिस संक्रामक रोग होता है ना, उस तरीके से फैल गया लोगों के मन में, एकदम लोग भयभीत हो गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कांपेंगे लोग डर के मारे। लोगों को पता ही नहीं था इस बात का। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका मतलब यह हुआ कि वो जो दो तीन लोग जो भयभीत हुए थे, उसने अपने भय को बाकी 60-70 लोगों के भय पर आरोपित कर दिया। अब देखिए कि बातें कैसे चेंज हो जाती हैं। उनको भय लग रहा था, उन्होंने एक को पहले भय लगा होगा, उस एक ने कई लोगों से बात की होगी, तो उसमें दो तीन लोग और भी भयभीत हो गए होंगे, डर से गए होंगे कि अरे बाप रे, इसमें इतना करना पड़ता है, अरे बाप रे, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो दो तीन लोगों का ग्रुप मिल गया, तो उन दो तीन लोगों के ग्रुप ने उसे पूरे के पूरे 50-60 लोगों के ग्रुप पर आरोपित कर दिया। मित्रों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा अगर कोई भय है, कोई संदेह है, कोई डाउट है, भ्रम है, तो कोई बात नहीं, हमें उसे अपने लेवल पर क्लियर करना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से जाके करना चाहिए कि यह मेरी प्रॉब्लम है, मैं सब पर क्यों लागू कर दूं। अगर विमुद्रीकरण हुआ है तो पूरा हिंदुस्तान बर्बाद नहीं हुआ है, कुछ लोग बर्बाद हुए होंगे, तो वो कुछ लोग कह सकते हैं कि पूरा हिंदुस्तान बर्बाद हो गया, या कुछ लोग आबाद हुए हैं तो वो कह सकते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान में तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो गया इसकी वजह से। तो हमें जो अपनी समस्या है या किसी चीज का जो हम पर प्रभाव पड़ता है, उसे अपने तक सीमित रखना चाहिए। इसी को कहते हैं अफवाह फैलाना। तीसरी बात यह है मित्रों कि जब हम सुनते हैं, चलिए कहने वाले ने तो कह दिया, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हमें उसकी बात पर भी ज्यों का त्यों विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति आपको बता रहा है वो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल नहीं, वो सच ही बोल रहा है, लेकिन वह सच उसका अपना सच है। उसका सच आपका सच नहीं बन सकता, कुछ सीमा तक तो बन सकता है, लेकिन वो ज्यों का त्यों कार्बन कॉपी का सच नहीं होगा। वो अपने सच को बता रहा है, आप उसके सच को सुनिए और उसके सच में अपने सच को जोड़कर अपना एक नया सच बनाइए, एक समीकरण तैयार कीजिए और उसमें अपने नए सच को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। मित्रों, ऐसा आप जिंदगी के सारे पक्षों में कर सकते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि हम होता यही है, हम दूसरों की अफवाहों के शिकार हो जाते हैं, दूसरा जो कहता है ज्यों के त्यों हम उसके फॉलोअर बन जाते हैं, और दूसरों के प्रभाव में आकर हम अपनी जिंदगी के लिए निर्णय ले लेते हैं कि हमको ये बनना है, हम करना है। मित्रों, आप सबसे इंपॉर्टेंट हैं, अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और आप अपने लिए जितना सही निर्णय नहीं आप सही निर्णय ले पाएंगे उतना आपके बिहाव पर कोई दूसरा नहीं ले पाएगा। हां, निर्णय लेने के प्रोसेस में आप दूसरों से एडवाइस लीजिए, वो आपको इनपुट देंगे, विचार करने के लिए आपको कच्चा माल प्रोवाइड करेंगे, तो लेकिन उस कच्चे माल को कुक तो आप कीजिए ना, किचन में जाकर के आलू गोभी मसाला सब दे दिया गया है, लेकिन सब्जी तो आपको बनानी पड़ेगी, तो सब्जी बनाइए फिर डिसीजन लीजिए। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के लिए बस मैंने आपसे ये विषय चुना था। अब आप देखिए कि घटना कितनी छोटी सी है, लेकिन उस छोटी सी घटना से आप जिंदगी के लिए इतनी कमाल की बातें निकाल सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये बातें कम कमाल की नहीं है। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।